मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं गे सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ और स्वाध्याय करते हैं। ये सब चीजें हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन हम सब कुछ करें और हमारा मन न बदले, हम सब कुछ करें और हमारे भावों में से कलुषता न जाए, तो ये सब करना भी जो है वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा नहीं बना पाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि हम जो भी धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान करें, उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि हमारे जीवन में पवित्रता, निर्मलता आनी चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसमें हम परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न करें। हम लोग जगह बदलने से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा ऐसा सोचते हैं, या कि किसी और परिवार में हम पैदा होते तो शायद हमारा जीवन और अच्छा हो जाता, हमारे पास थोड़ी अच्छी धन संपदा होती तो शायद हम अपना जीवन और अच्छे ढंग से जी पाते, ऐसे बहुत प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन ये कभी नहीं आता कि हम ही अच्छे होते तो सब कुछ अच्छा हो जाता। सब कुछ अच्छा हो जाए और हम अच्छे ना हो तो सब कुछ अच्छा होना भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए हमारी कोशिश अपने जीवन को परिवर्तित करने की, अपने आप को बदलने की होनी चाहिए। एक छोटी सी घटना मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, सुनाता हूँ तब भी लगता है कि शायद हमारे साथ भी यही सब कुछ है। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह 5 बजे मुंह अंधेरे और कौवे ने उड़ान भरना शुरू की, तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई थोड़ा दिन तो हो जाने दो, फिर कहीं आना जाना है तो उसके बाद जाना। तो कोयल ने पूछ ही लिया कि कौवा मामा, इतने सवेरे और इतनी जल्दी में आप कहां जा रहे हैं? तो कौवे ने कहा कि भांजी, ऐसा है कि अब यहां के लोग तो मुझे पसंद नहीं करते, मेरी आवाज किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि अन्यत्र कहीं और जाऊं जहां लोग मुझे पसंद करें, मेरी आवाज को पसंद करें। अब कोयल क्या कहे, ऐसे व्यक्ति से झगड़ा लेना भी मोल अच्छा नहीं है, तो बहुत प्यार से कहा कि मामा, अपनी आवाज बदल लो तो लोग तो यही पसंद करेंगे आपके। हम सोचते हैं कि कहीं और हम जाएंगे, किसी और स्थिति में हम अपना जीवन जिएंगे तो शायद हम बेहतर ढंग से जी पाएंगे। नहीं, हम अपने जीवन को जहां जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, एक बार तय कर लें कि हमें अपने जीवन को अच्छे से जीना है, तो परिस्थितियां हमें बाध्य नहीं करती हैं। असल में हमारी मन स्थिति ठीक हो तो परिस्थितियां सब हमारे अनुकूल हो जाती हैं, वरना तो संसार में प्रतिकूलताएं ही हैं। हमें उनके बीच में रह कर के भी, सारी विषमताओं के बीच में रह कर के भी हमें समता का पाठ सीखना हो, हमें सारी बुराइयों के बीच भी रह कर के अच्छाइयों का सबक सीखना हो, तो ये हमारे लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ थोड़ी सी बातों का अपन विचार कर लेते हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, अपने पास समय उतना ही है, छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, आगे जाकर के शायद इनको अभी से अपने जीवन को अच्छा बनाने की ललक लग जाएगी, तो एक अच्छी पीढ़ी हमारे सामने होगी। हम सब का ये पुरुषार्थ, हमारे काम नहीं आ पाए तो कम से कम इनके काम तो आ ही जाएगा। हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए और उनका समाधान भी अपने भीतर ही तलाशना चाहिए। पहला प्रश्न हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। लगता यह है कि मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने देश के लिए जी रहा हूं, मैं अपने लिए भी जी रहा हूं, तब फिर इतने अकेले उत्तर से तो समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तो ढूंढने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा। किसके लिए जी रहा हूं, तो देखा जाए तो सब अपने अपने लिए जीते हैं। ये तो कहने सुनने में अच्छे लगने वाली बात है कि हम इसके लिए जीते हैं, उसके लिए जीते हैं। क्या हमारे होने नहीं होने से किसी को ज्यादा फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल से तो अगर बहुत गौर से, ईमानदारी से देखें तो किसी के होने नहीं होने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं होता। हम इस संसार में जब यहां इस अवस्था में नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, हम यहां इस अवस्था में हैं तब भी चल रहा है, हम कहीं किसी और अवस्था में चले जाएंगे तब भी संसार का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, रुकता नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन में ये आता है कि शायद मैं इसके लिए जी रहा हूं, मैं उसके लिए जी रहा हूं। नहीं, सचमुच हम अपने लिए जी रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम इस तरह से जिए कि हमारा जीना दूसरे के काम आ सके। ये हमारे मन को समाधान देगी चीज। और अगर ऐसा समाधान हम अपने इस प्रश्न का खोज लेते हैं तब फिर हमारा जीवन अच्छा बने बिना रहेगा नहीं। अगर हम ऐसा सोच करके कि मैं तो सबके लिए जी रहा हूं और ये सब मेरे अनुसार ही जिए, तो सिवाय अहंकार के और पतन के कुछ हाथ में नहीं आने वाला। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने लिए जी रहा हूं, तो फिर अपने जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए जिससे कि दूसरे के जीवन में कोई मदद हो सके, मेरे होने की सार्थकता किस चीज में है ये मैं देखूं। अगर ये समाधान हम अपने आप में ढूंढ लेते हैं तो हमारा जीवन आसानी से अच्छा बन सकता है। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न हम अपने आप से पूछें कि ठीक है, मैं अपने लिए जी रहा हूं तो मेरे अपने जीने का उद्देश्य क्या है? मेरे अपने जीने का उद्देश्य कुछ थोड़े से पैसे कमा लेना, थोड़ी सी यश ख्याति अर्जित कर लेना, ये दो बातें सीख लेना ज्ञान की और अपने आप को बहुत ज्ञानवान बना लेना, क्या सिर्फ इतना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है? अभी एक बच्चे का प्रश्न आया है यहां से जाने के बाद कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मुझे बताएं आप कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या कुछ थोड़ी सी डिग्रियां हासिल कर लेना, क्या कुछ थोड़ी सी धन संपदा हासिल करना है ना, या कि कुछ यश ख्याति हासिल कर लेना, जन्म लेना और मर जाना, क्या सिर्फ इतना ही जीवन का उद्देश्य है कि कुछ और है, आप बताइए। तो जीवन का उद्देश्य तो भगवान के चरणों में बैठ करके हम स्पष्ट जान सकते हैं कि हमारे जैसे मनुष्य की तरह पैदा होकर के भी जिन्होंने भगवत्ता प्राप्त की, वही है हमारे भी जीवन का उद्देश्य। हम भी काटें अपने कर्मों को और प्राप्त करें वो अवस्था जो भगवान जिनेंद्र ने प्राप्त की है। उस वीतरागता को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वही सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन क्या करें, हम तो छोटे मोटे जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उन्हीं लक्ष्य की, छोटे मोटे लक्ष्यों की पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन राग द्वेष में व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि जितने लक्ष्य हैं वे राग द्वेष से प्रेरित होकर के हम करते हैं। वास्तव में हमारा लक्ष्य तो जीवन में वीतरागता, गुणवत्ता हासिल करने का होना चाहिए। हमारे भीतर की क्षमताएं कितनी हैं, अनंत क्षमताएं हमारे भीतर हैं, और उन अनंत क्षमताओं को हम कैसे उद्घाटित कर सकते हैं, तो अपने उस वीतराग लक्ष्य को ध्यान में रख कर के ही हम अपनी क्षमताओं को ठीक ठीक उद्घाटित कर सकते हैं। और तीसरी चीज, मैं जिस तरह अपने जीवन को जी रहा हूं उसका कारण क्या है। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये विविधता मेरे जीवन में क्यों है, मेरे इस तरह जीने का कारण क्या है, किसी और ने मुझे ऐसा जीने के लिए बाध्य किया है क्या, या ऐसा जीवन जीना मेरी नियति है क्या, मेरी मजबूरी है क्या, या ऐसा जीवन जीना मेरी कमजोरी है क्या, या कि ऐसा जीवन जीना मेरी चॉइस है क्या। समाधान यही मिलेगा कि ना ऐसा जीवन जीने की मेरी मजबूरी है, ना ऐसा जीवन जीना मेरी नियति है, ना ऐसा जीवन जीना मेरी कमजोरी है, मेरी चॉइस है ऐसा जीवन जीना। अगर मैं दुखी हूं तो मेरी चॉइस है, मैंने दुख चुना होगा तब तो मुझे दुख मिला है, मैंने दरिद्रता चुनी होगी तब मुझे दरिद्रता मिली है। मैं किसी को उलाहना नहीं दे सकता अपनी दरिद्रता के लिए, ना किसी की अमीरता पर घृणा कर सकता हूं, ना मैं ये कह सकता हूं कि यहां तो गरीब की कोई वैल्यू ही नहीं है, यहां तो धन पैसे वालों की वैल्यू है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, मैं क्यों हूं दरिद्र, मेरी दरिद्रता का कारण क्या है, किसी और के अमीर होने का कारण क्या है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग छोड़ना पड़ेगी, ये कहना कि मैं तो बहुत दीनहीन हूं, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप क्यों दीनहीन है, क्यों आप दरिद्र हैं, आपकी दरिद्रता का कारण क्या है, आपने ऐसे खोटे कर्म क्यों किए पूर्व जीवन में जिससे कि आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। ये आपकी चॉइस है, आपके अपने कर्मों को आपने संभाला होता तो आपको ये स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। आप किसी की अच्छी मौजूदा स्थिति को देख करके और दुखी नहीं हो, और ना ही अपनी दरिद्रता के लिए किसी और को जिम्मेदार माने, अपने आप को जिम्मेदार माने और देखें कि मेरे मौजूदा जीवन की जिम्मेदारी जब मेरी अपनी है तो मैं अपने इस जीवन को बदलने के लिए भी पुरुषार्थ कर सकता हूं। ये हमारे भीतर उत्पन्न होना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान हम ऐसे ढूंढें। वरना तो हम सोचते हैं कि हमारी मौजूदा स्थिति में बहुत सारे कारण हैं, क्या करें, देशकाल और परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि मेरा जीवन ऐसा दुखी व्यतीत हो रहा है। नहीं, मेरे दुख का कारण मेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं खोजूं मैं अपने दुख का कारण। अगर मैं यहां पर धन संपदा से युक्त हूं तो ध्यान रखूं कि मैंने कोई ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से, मैंने दान दिया होगा इसलिए आज मेरे हाथ में और चीजें आई हैं, अब मैं भूल ना जाऊं। अब मैं अगर जो मेरे हाथ में चीजें आई हैं उनके भोग विलास में ही लग जाऊंगा और किसी को भी वो चीज नहीं दूंगा तो अगले दिन फिर मेरे लिए भी वो चीज प्राप्त नहीं होने वाली जो आज सहजता से प्राप्त हुई है। मैंने अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो मैंने पहले संतोषपूर्वक जीवन जिया होगा इसलिए मुझे ये मनुष्य की देह मिली है। अब मैं अगर असंतोषपूर्वक जीवन जीऊंगा, बहुत आरंभ परिग्रह के साथ जीऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, ऐसा प्रश्न हमारे भीतर उठना चाहिए। तो मालूम पड़ेगा कि मेरी मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, ये मेरी अपनी च्वाइस है, मैं किसी से इसके लिए उलाहना नहीं दे सकता, किसी से शिकायत नहीं कर सकता। तब फिर मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने की खुद स्वयं अपने से प्रेरणा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैं पुण्य पाप के बारे में जानता हूं तो उस जानने का महत्व क्या है। मैं भले बुरे को बहुत अच्छे से समझता हूं तो मेरे उस भले बुरे को समझने का मतलब क्या है। मैं जानता हूं कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है तो फिर मैं आग में हाथ भी डालता हूं और यह भी कहता हूं कि मैं जानता हूं कि ये जल जाएगा। तब फिर ऐसे जानने का मकसद क्या है। मैं बहुत चीजें जानता हूं, मैं अपना भला बुरा, दूसरे का भला बुरा सब अच्छे से पहचानता हूं, दूसरे को बता सकता हूं कि इसमें तुम्हारा भला है इसमें बुरा है, मैं बहुत अच्छे से समालोचना कर सकता हूं हर चीज की। अरे वाह, तो फिर अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में भी हमें यह समालोचना करनी चाहिए कि जब मैंने इतना सब कुछ जाना कि यह अच्छा और यह बुरा है, तो फिर मेरे कदम बुरे की तरफ क्यों चले जाते हैं, मेरे कदम अच्छी की तरफ क्यों नहीं जाते। सिर्फ ये जान लेने से कि क्या भला है और क्या बुरा है, काम नहीं बनने वाला। जो भला है उसे स्वीकार करना, जो बुरा है उससे बचना, ये जीवन को अच्छा बनाने के लिए समाधान है इस प्रश्न का। एक सेठ जी से, तो वो बहुत जानकार थे, अपने आप को वो बहुत विद्वान समझते थे कि मेरे से ज्यादा कोई समझदार है ही नहीं संसार में। वैसा ज्ञान नहीं था उनको कोई कि धर्म का ज्ञान हो, बस ऐसे ही चलता हुआ व्यवहार ज्ञान था बहुत, जिसकी वजह से वो हर चीज में कोई उनसे पूछे कि ये चीज ऐसी, तो कहते आई नो वेल, मुझे मालूम है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो लोगों ने उनका उनके क्या बोलते हैं उसको कि उनकी पहचान ही बना ली थी कि आई नो वेल, मैं सब जानता हूं। अब क्या हुआ, उनके घर में एक दिन चोर घुसे। अब चोर घुसे तो उनकी तो नींद लगी थी, सेठानी जी की नींद खुल गई, तो उनने धीरे से कहा कि लग रहा है कि जैसे चोर घुस गए हो। तो कहले मैं जानता हूं, अब आदत तो वो थी कि आई नो वेल। अरे तू कहले चोर घुसे हुए हैं और आप कह रहे आई नो वेल। बोले बिल्कुल ठीक बात है, जिसके पास धन पैसा उसी के यहां तो घुसेंगे, सबके यहां थोड़ी घुसते हैं। अब और देखिएगा, तर्क देखिएगा और अपनी बात को सिद्ध कर ले, सोने दो आराम से। सोए हुए, अब जब चोरों ने जो है सामान वामान बांधना बूंदना शुरू कर दिया, तो फिर सेठानी ने फिर धीरे से हिला के कहा कि वो तो सब बांध रहे हैं। कह ले आए हैं तो बांधेंगे नहीं, हो आई नो वेल, मैं जानता हूं, इसके बाद तो वो यही करेंगे, ये तो बहुत सीधी सी बात है। अब वो सब सामान वामान बांध लिया और ले जाने लगे, तो फिर उनने कहा कि वो तो ले ही जा रहे हैं। कह ले तुम भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो, ना जब इतनी मेहनत करके बांधा है तो क्या यहीं छोड़ जाएंगे, ले नहीं जाएंगे क्या। अब ले साहब वो उठा के भी ले गए, ये कह रहे कि आई नो वेल, इसके बाद तो वो ये करेंगे। वो कह रहे हाँ मुझे मालूम। और जब सवेरे जब नींद खुली जनाब की, तब छाती पीट के रो रहे हैं कि मैं लुट गया हूं। अब ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति के ज्ञान के लिए आप क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे, हंसी आ रही ना अपन को। और अपने ऊपर भी आना चाहिए कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि ये गलत है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। वो भी यही कह रहा है कि वो उठा के ले जा रहे हैं, तो फिर सवेरे से फिर रोने की क्या आवश्यकता थी, जब आपने रात में ये कहा था कि वो तो ले ही जाएंगे, तो सवेरे से संतोष रखना चाहिए था। लेकिन कहां हो पाता हम सबके जीवन में भी, ये हमें अपने जीवन में झांक करके देखना चाहिए कि भले और बुरे का ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान का मैंने कितना सदुपयोग किया अपने जीवन को भला बनाने के। ये समाधान हमें अपने जीवन में खुद खोजना चाहिए। और एक प्रश्न और अपने से पूछें कि हमारे अपने जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए। जब मैं ये जान चुका हूं कि मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए जीना है, मेरे जीवन का उद्देश्य वितरागता हासिल करना है, मेरी वर्तमान स्थिति के लिए भी मेरे ही पूर्व संचित कर्म जिम्मेदार हैं, मैंने इतना सब कुछ जाना भले बुरे के बारे में, तब मुझे अब अपने जीवन जीने के ढंग पर भी विचार करना चाहिए। मेरे जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए, बहुत संतोषपूर्वक, धैर्यपूर्वक, समतापूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। यही हमारे जीने का ढंग हमारे जीने को सार्थक बनाएगा, हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा। एक छोटी सी घटना कह के और बात पूरी करूं, मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है। सन 1978 की घटना है। मैं उन दिनों आचार्य महाराज के दर्शन करने चतुर्मास में नैनागिर गया था, तो वहां मैंने देखा थोड़ी देर के लिए आचार्य महाराज बाहर आकर के बैठ गए, सब लोग दर्शन के लिए लाइन लगा करके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे एकदम घेर लेंगे तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो सबने अपने आप ही एक लाइन लगा ली कि चलो अपन लाइन में चलेंगे, निकट से महाराज के पास पहुंच भी जाएंगे, नमोस्तु करेंगे, जो भी चढ़ाना है द्रव वो चढ़ाएंगे और एक एक करके आगे बढ़ते जाओ, फिर आपका नंबर आ जाए आप भी कर लो, इस तरह से व्यवस्थित ढंग से दर्शन हो जाएंगे सबको अच्छे से। तो सब लोग दर्शन कर रहे हैं, हम भी दर्शन करने वालों की लाइन में लगे हुए थे। उस समय देखा हम लोगों ने, सब चकित हुए, आचार्य महाराज तो बहुत, उसके बाद उन्होंने उपदेश भी वही दिया, जीवन जीने का ढंग उन क्षणों में समझ में आया कि सचमुच जीवन जीने का ढंग ऐसा ही होना चाहिए। सबके पास आचार्य महाराज के चरणों में समर्पित करने के लिए पुंज है, चावल है, कोई शीफर लेके आया है वो शीफर चढ़ा रहा है, कोई पुंज लेके आया है वो पुंज चढ़ा रहा है, एक पिता का हाथ पकड़ी हुए छोटा सा बेटा भी साथ में, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। इनके भीतर अगर ये भावना उत्पन्न हो जाए तो हम सबका तो कहना चाहिए इनको जो उपदेश है वो देना सार्थक होगा। तो उसमें से वो जो बच्चा था उसके एक हाथ में वो टॉफी लिए हुए खा रहा था चॉकलेट, अब वो तो अपने पिता के साथ में, तो देखा उसने कि सबने चढ़ा है कुछ ना कुछ, अब उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या चढ़ाऊं, तो वो एक और पॉकेट में चॉकलेट रखे हुए था, दाएं हाथ से वो अपनी चॉकलेट खा रहा है, बाएं हाथ से कोई देखे या नहीं देखे उसने वो चॉकलेट निकाल करके आचार्य महाराज के सामने चढ़ा दी। उन क्षणों में सब चकित थे, सब तो हंस पड़े, लेकिन वे क्षण बहुत दुर्लभ और बहुत अद्भुत थे। जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा लगाव था, जिस चीज के लिए उसने रो धो करके कितनी जिद करके प्राप्त किया था, उस चीज को भी उस वीतराग मुद्रा के सामने सहज भाव से चढ़ा दिया। क्या हमारा जीवन भी इतना ही सहज नहीं होना चाहिए? हमारे जीवन जीने का ढंग भी क्या इतना ही अनाशक्त नहीं होना चाहिए? अगर एक पाठ हम उस छोटे से बच्चे से अपने जीवन जीने का सीख लें कि जहां इस तरह अवसर आवे, जहां वीतरागता सामने दिखाई पड़े, मैं अपनी तमाम आसक्तियों के जाल को तोड़ करके और वीतरागता के चरणों में अपना जीवन ही न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाऊं, तो फिर देखिएगा कैसे नहीं हमारा जीवन अच्छा बनता है। ये छोटी छोटी सी चीजें भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में कारण बन सकती हैं भैया। जैसे बने तैसे और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे बने तैसे संसार बढ़ाने का तो खूब उपाय कर लिया, जैसे बना तैसे किया, संसार बढ़ाया, सब जोड़ जाड़ करके रखा, लेकिन अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जैसे बने वैसे, अई कथमपि व्रत्वा तत्व कौतूहली सन प्रथगत विलसन्नम क्षण मास मेकम। अरे जैसे बने, मर करके भी बने तो अपने देह से अपनी आत्मा को पृथक अनुभव करके तो देखो, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य महाराज कह रहे हैं। वही चीज हमारे लिए आज ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे बने तैसे। मैंने तो बेईमानी करके भी धन संपत्ति जोड़ी है, तो कम से कम इतना तो करूं कि जैसे बने तैसे, अर्थात जितना पुरुषार्थ हो सके वो सारा पुरुषार्थ अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगा दे, तो हमारा जीवन अच्छा बने बिना नहीं रहेगा। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करते हैं कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील हों। ओ नमो अरिहंता।
नमो सिद्धानुम् ओम नमो आयरियाणम् ओम नमो अध्यायाणम् नमो लोये सौवसावूनम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत वो दो हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन
उपक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदी पशु धूप फलार्घ कई
जिन ग्रहे मुनि राज मगन
ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामि की।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति वै अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे थे। एक अकेली भगवान जिनेंद्र की भक्ति भी हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है। 16 कारण भावनाओं में जो अपन ने एक अरद भक्ति भावना पर विचार किया था, तब भी अपन ने यह अनुभव किया कि यदि हम भक्ति को श्रद्धा पूर्वक और भगवान के प्रति उनके गुणों के प्रति अनुराग पूर्वक करते हैं और उनके जैसे बनने की भावना हमारे भीतर जागृत हो जाती है, तो ऐसी भक्ति भी हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। तो इस तरह की भक्ति के लिए कई बार ऐसा लगने लगता है कि ज्ञान चाहिए, भगवान के गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उसके लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन वादिराज महाराज भक्ति करते हुए कुछ और ही बात कहते हैं। शुद्धे ज्ञाने सुचिनि चरिते सत्यपि स्वय त्वयि अनीचा भक्तिर्नो चेद अनवधि सुखा वंचिका कुंचिके शक्योद्घाटम भवति ही कथम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्ति द्वारम परिदृढ़ महा मोह मुद्रा कवाटम। हे आपके पास बहुत शुद्ध ज्ञान रखे रहो, ऐसा कह रहे हो। सुचिनि चरिते, बड़ा पवित्र है आपका आचरण, रखे रहो। क्या होने वाला, बड़ा आश्चर्य लगता है। उधर एक तरफ तो हम विचार करते हैं सारी चीजों का ज्ञान के माध्यम से, और लगने लगता है कि बिना हमें तो ज्ञान के और कुछ काम ही नहीं हो सकता, और यहां कह रहे हैं कि आपके पास बहुत शुद्ध ज्ञान है, रखे रहो। क्या होने वाला, आपका बहुत व्रत नियम संयम बहुत है, आपका चारित्र बहुत ऊंचा है आपका, रखे रहो, क्या फर्क पड़ने वाला। तो कहना क्या चाहिए, क्या इनके बिना हो जाएगा कल्याण? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। इनके बिना भी कल्याण होगा नहीं, लेकिन इनके द्वारा ही कल्याण हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। शुद्ध ज्ञान के मायने हैं ऐसा ज्ञान जो हमें स्वतंत्र कर दे, हमें मुक्त कर दे, और ऐसा ज्ञान
वो तो श्रद्धा पूर्वक ही होगा। तो श्रद्धा से रहित जो ज्ञान है, जो मुक्ति में कारण नहीं है, वो वाला ज्ञान कितने भी अपने पास रखे रहो कुछ नहीं होने वाला, ये कहना चाह रहा है। बिना श्रद्धा के कितने व्रत उपवास नियम का पालन कर लो, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलते हुए अगर उनके मार्ग में श्रद्धा नहीं है तो वो किया हुआ चारित्र का पालन भी कोई ज्यादा जीवन को अच्छा बनाने में कारण नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत किसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो सकता है, बहुत तत्व चर्चा कर सकता है, लेकिन जरा सी विपरीत परिस्थिति में विचलित भी हो जाता है तो उसका वह तत्व चर्चा और तत्व ज्ञान उसके आत्म कल्याण में कारण नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति घंटों व्याख्यान दे सकता है लेकिन जरा सी बात पे हो सकता है कि कलह करने लगे तो कहते उसका वह व्याख्यान व्यर्थ हो गया। कोई व्यक्ति 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी विशिष्ट ज्ञान का क्षयोपशम होने पर प्राप्त कर सकता है इतना ज्ञान, लेकिन भीतर में भगवान जिनेंद्र के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसका यह अपार ज्ञान भी उसके कोई काम नहीं आएगा। जिस ज्ञान से कुछ थोड़े से प्रश्नों का समाधान मिल जाए लेकिन जीवन समस्याओं से घिरा रहे, वो ज्ञान कोई काम का नहीं। ज्ञान वो है जो कि जीवन का समाधान दे सके, और ऐसा ज्ञान बिना श्रद्धा के हो नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत आपका आचरण है अच्छा, शुद्धे ज्ञाने सुचिनी चरिते सती अपि तई अनीचा भक्तिर नोचेत। अगर ऐसा होने पर भी भगवान के प्रति अनीचा भक्ति अर्थात श्रेष्ठ उत्कृष्ट भक्ति नहीं है अगर भगवान के प्रति, जो कि वंचिका कुंची के यम, वह जो भक्ति है वो तो कुंची के समान है, वो तो ताली के समान है, चाबी के समान है, अगर वो नहीं है तो मोक्ष पर उसके दरवाजे पर लगा हुआ ताला वो खुल नहीं सकता। किस चीज का ताला लगा हुआ है? मोह मुद्रा कवाटम, मोक्ष के द्वार पर मोह का ताला लगा हुआ है, और उस मोह के ताले को ज्ञान और बाह्य व्रत नियम नहीं खोल सकता। खोल सकती है तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति रूपी चाबी उस ताले को खोल सकती है। बताइए, वादिराज महाराज के भक्ति करने का ढंग, उनके भक्ति करने की भावना, ये नहीं कह रहे हैं वो कि आपके ज्ञान और आचरण से कुछ नहीं होने वाला, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान और आचरण के साथ अगर भक्ति नहीं है तो ऐसे ज्ञान और आचरण से कुछ नहीं होने वाला। वो भगवान की भक्ति यानी कि सम्यक दर्शन, वो अगर हमारे जीवन में नहीं है, अपनी भक्ति कैसी होती है? नीचा भक्ति होती, अनीचा नहीं होती। अनीचा भक्ति वो कहलाती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता भगवान की भक्ति करते समय, जिसमें कोई देखा देखी नहीं होती, गतानुगतिकता नहीं होती, जिसमें किसी परंपरा के निर्वाह करने की बात नहीं होती, जिसमें आत्म स्वरूप को देखने उसे प्राप्त करने की भावना होती है वो भक्ति, जिसमें हम अपने ही आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, अपने ही उस वीतराग स्वरूप में लीन होते हैं, वो भक्ति। भक्ति वास्तव में भगवान के स्वरूप में लीन होना यानी अपने ही वीतराग स्वरूप में लीन होना है। ऐसी अगर किसी के पास भक्ति है तो वो उत्तम भक्ति है, और बाकी जो भक्ति के बाह्य क्रियाएं हैं वो सब उसी में कारणभूत हैं,
लेकिन उन्हीं को हम भक्ति न मान लें, वो तो भक्ति के लिए कारणभूत बाह्य क्रियाएं हमने की हैं। भक्ति तो अंतरंग में भावों में होगी, भगवान के गुणों के प्रति जब अनुराग उमड़ेगा, उनके जैसे बनने की भावना उमड़ेगी, तब जाकर के वास्तव में हम अंतरंग में भक्ति कर पाएंगे। देखा देखी भक्ति करने से या स्वार्थ वश भक्ति करने से हमारा वो लाभ नहीं होगा जो लाभ हम चाहते हैं, हानि होगी ऐसा न समझना। सो तो होगा लाभ, भगवान की भक्ति चाहे स्वार्थ से करो और चाहे परंपरा से करो, लाभ ही होगा, हानि कुछ नहीं होने वाली। लेकिन जैसा लाभ हम चाहते हैं भैया वैसा नहीं होगा, घाटे की सौदा हो गई। जितना लाभ मिलना था वो न मिल करके थोड़ा बहुत मिल जाएगा, थोड़ा अच्छे श्रेष्ठ कर्मों का बंद हो जाएगा, बाकी पापों की निर्जरा तो नहीं होगी। और अगर कर्मों की निर्जरा करने वाली भक्ति करनी है तो वो भक्ति तो निस्वार्थ भाव से भगवान के वीतराग स्वरूप को स्वयं प्राप्त करने के लिए ही की जाएगी। ये कहना चाहे, एक धोबी की घटना है कि उसके यहां पर एक गधा था। धोबी को तो गधा चाहिए पड़ता अपने कपड़े वगैरह धुल करके ले जाने के लिए, तो उसके यहां पला हुआ था गधा। और उसके यहां पर क्या हुआ कि एक बिल्ली भी रहने लगी, बिल्ली भी पल गई, तो बिल्ली ने दिए बच्चे। अब वो छोटे छोटे से बच्चे थे तो वो उसको गोद में ले लेता, और गोद में ले लेता तो वो बच्चे उसका मुंह भी सूंघते और उसको पंजे भी मार देते। पर ऐसा करने पर भी वो जो मालिक था तो वो उसको बहुत प्यार करता। तो गधे के बच्चे ने भी सोचा कि ऐसा मैं करूंगा तो मुझे मेरा मालिक बहुत प्यार करेगा। अब बताओ अगर बिल्ली के बच्चे जैसा गधे का बच्चा भी वैसे ही प्यार व्यक्त करने लगे तो होगा कुछ काम। आया समझ में भैया? भगवान के प्रति अनुराग हमारे अंतरंग से होना चाहिए। जे करते हैं वे करते हैं, करो चाहिए इसे करो, ऐसा नहीं। हमारे अंतरंग में देखा देखी नहीं, स्वार्थवश नहीं, मेरे आत्म कल्याण की दृष्टि से मैं अपना कर्तव्य मान करके उसको अंगीकार करूं भक्ति को, तो वो भक्ति इतनी आसानी से हमारे जीवन को अच्छा बना सकती कि हम सोच भी नहीं सकते। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हमारे ख्याल से तो जितनी संसार में हम मेहनत करते हैं वो करना छोड़ देवें तो हमें आसानी से मेहनत कौन सी करना पड़े, राग द्वेष में मेहनत करने भैया, और काय की मेहनत। हमारे ख्याल से तो जितनी मेहनत राग द्वेष करो हो तो वीतरागता में भैया आज तक कोई हो बताओ, वीतराग भाव रखने में कोई मेहनत नहीं है। सारी मेहनत संसार में है तो राग द्वेष की मेहनत है। लोग कहते कि महाराज आप दिन भर काम में लगी रहे थक जात हुई हो। हमने कि हम नहीं थकत, हम जब थकत जब को राग द्वेष करन लगत तो थक जात, अब भाई हमसे नहीं हो जो। और कोई कहीं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वीतराग भाव धारण करने में तो कोई मेहनत नहीं। और वही भक्ति का उद्देश्य है, उस वीतराग भाव को कहीं कोई परिश्रम की वहां पर आवश्यकता नहीं है। प्रच्छन्न खलवय मगमय रंधकारी समन्ता पंथा मुक्ते स्फुटित पद क्लेश गर्तरगाधि तत्कस्तेन व्रजित सुकुतो देव तत्वावभासी यद्यग्रे अग्रे न भवती भवत भारती रतन दीपा। वादिराज महाराज फिर भगवान की भक्ति करते हुए आगे कहते कि भगवान ये जो मोक्ष का मार्ग है पंथा मुक्ते, यह जो मोक्ष का मार्ग है प्रच्छन्न ढक गया है। कैसे ढक गया भगवान? किसी ने ढक दिया क्या? नहीं, मेरे ही पापों से ढक गया है। जैसे अंधेरे से मार्ग ढक जाता है सो सूरज की रोशनी आने पर वह पुनः प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही कोई मेरे मोक्ष मार्ग को आकर ढकता नहीं है, मेरे मोक्ष मार्ग को मैं ही अपने पापों से ढक लेता हूं। क्लेश करते ही रगा दही स्थपुटित पदा, और ऐसी स्थिति में जब मैं उन पापों में लिप्त होकर के अपने मोक्ष मार्ग को ढक लेता हूं, तो फिर मेरे पैर भी उस मोक्ष के मार्ग में ऊंचे नीचे पड़ने लगते हैं, क्योंकि मार्ग तो ऊबड़ खाबड़ है। जब पाप से ढका हुआ है तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, और उस पाप के उदय में उस मार्ग में गड्ढे बहुत हो जाते हैं। कौन से गड्ढे? क्लेश गड़ता ही रगा दई है, बहुत बड़े बड़े क्लेश के उसमें गड्ढे भी है। अब बताओ भगवान की, ऐसे में उस मार्ग पर कोई चले तो कैसे चले? वाह, उतरो नीचे, वाह भाई वाह, उसको वो दिख गया ऊपर, खाने की चीज लग रही उसको। ठीक बैठेगी वो, उसके नीचे बैठ जाती है। तो यह जो मोक्ष का मार्ग है वो तो अत्यंत प्रकाशित है, लेकिन उस मोक्ष के मार्ग को मैंने ही अपने पापों से ढक रखा है। अगर मोक्ष के मार्ग में मुझे परेशानी होती है तो मेरे अपने उन्हीं पाप कर्मों की वजह से होती है। अगर कोई क्लेश होता है तो वह भी मेरे ही अपने कर्म के उदय से होता है। बस वो दीपक गिरा न ले अपने ऊपर, इतना ही है। हाँ, वो दीपक का भय है उसको। तब फिर कोई क्या करे भगवान उस मोक्ष के मार्ग पर? कह रहे हैं भगवान की भक्ति करते हुए वादीराज महाराज, इस्तपुट पदा क्लेश करते ही रगा दे। तत्कस्ते न ब्रजति सुखतो देव तत्वावभासी यज्ञग्रग्रे न भवति भवत भारती रत्न दीपा। कोई कैसे चल पाएगा भगवान उस मोक्ष के मार्ग पर अगर उस मार्ग को प्रकाशित करने वाली आपके वचन रूपी दीपक, आपके वाणी रूपी दीपक की ज्योति अगर आगे आगे नहीं हो, या यज्ञग्रे अग्रे आगे आगे अगर आपकी वाणी, आपके द्वारा कहे गए वचन वो ध्यान में रखता है, तो उसका मार्ग बहुत आसान हो जाता है। वादीराज महाराज अपने जीवन के स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई व्याधि हुई है, अगर मेरे जीवन में मोक्ष मार्ग पर चलते हुए कोई कष्ट आया है, मेरे मोक्ष के मार्ग में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आई है, तो उसका कारण और कुछ नहीं है, मेरे अपने पूर्व संचित पाप कर्म ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मोक्ष के मार्ग पर मैं आसानी से चल सकता हूं, कैसे? वो हम सब के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम सब संसार में, कोई कमती दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, पर यहां सब दुखी हैं, सब विपत्ति से घिरे हुए हैं, सब संकट से ग्रसित हैं। सबसे बड़ा संकट तो अपने भीतर ही लय फिर रहे सब जने, मोह का संकट, मिथ्यात्व का संकट तो भीतर ही अपने लिए फिरते हैं, और दूसरे संकट की क्या बात करें। कहते सब उस संकट से, विपत्ति से घिरे हुए हैं, और मोक्ष के मार्ग पर चलना कैसे आसान होगा अगर आपके वाणी रूपी दीपक आगे आगे ना हो। अर्थात मोक्ष के मार्ग पर चलना आसान हो सकता है सारी विपत्तियों के बावजूद भी इस भक्ति के माध्यम से, क्योंकि भक्ति जो है वो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के लिए प्रकाश के, दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। क्योंकि भक्ति करने वाला क्या स्थापित कर लेता? भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे जिससे हमारा अनुराग होवे वही से बातचीत हो पाती, बताओ नहीं होती? हजार आदमी मिलत हुई रास्ता में, सबसे करत जय जिनेंद्र, नहीं जो उनसे थोड़ी चिनार हो उसे करत, उसे चार बातें और ज्यादा पूछ लेते भैया कैसे हो हैं? अब भगवान से अगर हमारी पहचान हो जावे भक्ति के माध्यम से, उनके प्रति हमारा अनुराग हो जावे, तो फिर हम उनकी बात समझने लगते हैं, फिर पूछने लगते हैं अपने कल्याण के लिए। वही तो, वो जो कल्याण के लिए भगवान निरंतर हमारे कह रहे हैं उनकी वाणी, वो फिर हमारे लिए दीपक का काम करती है और आसानी हो जाती। वादिराज महाराज भी यही कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान कि मेरे इस व्याधि को आप दूर कर दो, मैं आपकी भक्ति से अपनी व्याधि दूर करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि इस तमाम व्याधि के बावजूद भी मेरे मोक्ष के मार्ग में मुझे जरा भी मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल? क्योंकि आपकी वाणी का चिंतन करता रहता हूं, सो ये सारे दुख भी होते हुए दुख मुझे दुखी नहीं कर पाते। दुख हो सकता है लेकिन वो मुझे दुखी करे ऐसा नहीं, परेशानियां हो सकती लेकिन मैं परेशान हूं ये अनिवार्य नहीं है, वो मेरे ऊपर निर्भर कि सारी परेशानियों के बावजूद भी मुझे परेशान होना कि नहीं होना, मुझे तत्व चिंतन करना है या कि उन परेशानियों का चिंतन करना, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलते हुए इस तरह की स्थिति निर्मित होने पर भी भक्ति के माध्यम से तमाम विपत्ति और संकटों के बावजूद भी भगवान का भक्त अगर कोई है तो आसानी से उस मार्ग पर बिना किसी बाधा के चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सहारा है, उसको प्रकाश दिखता रहता है कि भगवान ने तो मुझे ये कहा था, मेरा स्वरूप तो ये है, मैं कहां जो है इसमें पड़ गया। चार मेंढक थे, एक पटिया पर बैठे और नाव में बह रहे थे। अब कहानी है भाई, देखो नहीं तो आप कहो कि जी ऐसे कहां से ले आए आप मेंढक और वो पटिया पर बैठे और जा रहे। अब आदमी की कहें तो बुरा ही लग जाए, इसे मेंढक की अच्छी है। तो वो चारों मेंढक चले जा रहे हैं उस पटिया पर बैठे, तो एक के मन में आया तो वो कहता है कि देखो तो जी पटिया सजीव है, बह रहा है पटिया, चल रहा है। दूसरा तो तीन ने सुना तो एक से रहा नहीं गया, कह ले बुद्धू हो तुम, हैं कहीं पटिया सजीव होता है क्या, वो चलता है? अरे पानी बह रहा हो सो पटिया बह रहा हो। तो दूसरे ने अपनी बात कह दी कि पानी की वजह से पटिया बह रहा। अब तीसरे को कहां शांति, कह ले सुनो ने पानी बह रहा हो ने पटिया बह रहा हो, अपने मन में विचार बह रहे सो अपन खुए सो लग रहा हो। अब वो भी बिल्कुल सही था, वो भी सही। अब तीन सब एक दूसरे से ज्यादा जबरदस्त। अब चौथा वाला जो है वो अब लेकिन तीनों अपनी अपनी बात पे अड़ी। पहला कहता है कि पटिया बहरा, दूसरा कहता नहीं पानी बहरा, तीसरा कहता है कि अरे ये तो विचारों का प्रवाह है, चौथा चुपचाप बैठा हुआ है। भगवान की वाणी तो कैसी है, वस्तु स्वरूप को हमारे आत्म स्वरूप को यथावत दिखाने वाली है, किसी एक पहलू से नहीं, वो तो समस्त समग्र वस्तु को दिखाने वाली। ऐसी वाणी का आलंबन कोई लेवे तो फिर देखिएगा कि कैसे उसके मोक्ष मार्ग में बाधा आ सकती है, कैसे उसको संसार के दुख सुख जो है वो तकलीफ दे सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं भक्ति के माध्यम से। तो चौथे वाले से पूछा कि क्या भैया तुम भी तो कहो कछु, सुखे ले तुम तीन ही जने सही हो, हमें जय कहने और कछु। अकेले लड़ो ने कि नहीं पटिया ही सही है, बहरा है कि नदी ही बह रही, कि विचार ही, तीनों चीजें सही है। लेकिन कहते हैं कि उन तीनों को जा बात नहीं जमी, सुबह उचके सो तीन ही डूब गए। अपने साथ भी यही है, अपना ज्ञान इसी तरह का है, वो हमारे लिए ज्योति नहीं दे पाता। भगवान की वाणी तो अपन को मिली, वो ज्ञान तो अपन को प्राप्त हुआ, लेकिन कौन सा ज्ञान सही है? सापेक्ष ज्ञान ही सही है। भगवान की वाणी तो उसी अनेकांत स्वरूप का हमें दर्शन कराती है, जिसके माध्यम से हम हर परिस्थिति का विचार करके सापेक्ष रूप से और अत्यंत समता भाव को धारण कर लेते कि ठीक है इस अपेक्षा से ये बात ठीक है, इस अपेक्षा से ये बात ठीक है। क्यों संकलेश में पड़े, क्यों राग द्वेष में पड़े? यही तो भक्ति हमारे लिए जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दे रही है। इस तरह यदि हम भक्ति के स्वरूप को ठीक ठीक समझकर और भक्ति करें निस्वार्थ भाव से उस वितराग स्वरूप को पाने के लिए, और निरंतर उस भक्ति के माध्यम से और भगवान ने क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है, अपने स्वरूप को जानने का उपदेश दिया है, उसको अगर ध्यान में स्मरण में रखें तो इस संसार के राग द्वेष से, संकट से आसानी से बच सकते हैं। इसी भावना के साथ
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो,
शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता
हो। अर्ध निशाका सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
करते तप शैलन दी तट पर तरु तलवर सा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गड़ियों में,
अंतर जाला हरती वाणी मानो झरती है फूल झड़ियां,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सादा में क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आप पर भास वेखो, भानु शिव खानी है
छहु द्रव्य जान वेखो, बंध विधि भान वेखो सपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है।
अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो, काहू न सताय वेखो भव्य उरयानी है।
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है।
के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, बवल मंगल गान
रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज मगम।
परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद